ओम शांति। संगम युग में बहुत थोड़ी सी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली। ये भी पद्मा पदम उन आत्माओं का भाग्य है जो साक्षात ब्रह्मा के साथ इस संगम युग के समय पर संसार में पार्ट बजाते हैं। हम सभी के समक्ष ऐसे एक महान हस्ती उपस्थित है जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली। पालना तो ली ही ली, लेकिन एक विशेष अद्भुत भाग्य कहे जो 17 तारीख को, 17 जनवरी 1969 इस तारीख को बाबा से मुलाकात हुई, बाबा से रूह रिहान हुई, टोली दृष्टि। 18 तारीख को भी आपने यही सौभाग्य प्राप्त किया और 17-18 तारीख को 69 में आप मधुबन में ही थे, जबकि बाबा इस साकार दुनिया से, साकार देह से अव्यक्त हो गए। तो ऐसे महान हस्ती के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत सत्कार करते हैं। 1962 में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, लौकिक रीति आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ज्ञान सरोवर एकेडमी के कोऑर्डिनेटर है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। एक विशेष उपाधि आपको प्राप्त हो चुकी है भारत सरकार की तरफ से, शायद ये उपाधि किसी और को नहीं प्राप्त हुई होगी। पहली बार ये नाम सुन रहे हैं, पर्यावरण श्री की उपाधि। पर्यावरण श्री की उपाधि से भ्राता मोहन सिंघल जी सम्मानित किए गए हैं भारत सरकार की ओर से। तो ऐसे भाई जी का हम स्वागत करते हैं और भाई जी का विषय है श्रीमत का हाथ और साथ। इस विषय से हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाकर भाई जी लाभान्वित करेंगे।
ओम शांति। एक बार सब फिर मिल करके अंतर हृदय से बोले, ओम शांति। कई बार दादी जी ओम शांति को उस रूप से कहलवाते हैं जैसा हमारे यज्ञ की स्थापना के आदि काल में ओम ध्वनि की जाती थी। तो हम सब मिल करके उसी रूप में फिर से बोलेंगे जैसा हम बोलते हैं। हमारे साथ ही बोलिए, ओम शांति। ये ओम शांति का महामंत्र अगर देखा जाए तो आज के विषय से बहुत गहरा संबंध रखता है। आज का विषय है, क्या बताया बहन जी ने अभी, श्रीमत का हाथ और बाबा का साथ। तो सबसे पहली श्रीमत तो बाबा की यही है जो ओम शांति के महामंत्र में समाई हुई है। कौन सी श्रीमत? कि अपने को क्या समझो, हाँ, आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। तो श्रीमत का हाथ और बाबा का साथ। पिछले कुछ दिनों से मुरलियां जो चल रही हैं, साकार बाबा की भी मुरलियां और बाबा ने भी जो दो दिन पहले अव्यक्त मुरली चलाई, वह सभी श्रीमत की ओर इशारा करती हैं। कौन कौन सी श्रीमत हमें कहाँ कहाँ तक ले जाती है, तो श्रीमत का हाथ जब हम कहते हैं, श्रीमत किसकी है? शिव बाबा की, परमात्मा की। और श्रीमत का हाथ और बाबा का साथ, कौन सा बाबा? शिव बाबा ही। दोनों का, बाप और दादा। क्योंकि शिव बाबा ने जो कहा, श्रीमत तो शिव बाबा की है, तो श्रीमत जो शिव बाबा ने दी उसको ब्रह्मा बाबा ने भी ही सबसे पहले फॉलो किया, श्रीमत की पालना की। तो हम बच्चों के लिए श्रीमत का हाथ और बाबा, यानी दोनों शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का साथ। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को, कितने इंजन मिले हुए हैं रेलगाड़ी में, कितने? डबल इंजन, बाप और दादा। जब कोई चढ़ाई पर, हिल स्टेशन पर ट्रेन जाती है तो ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, तो कई बार दो इंजन लगाते हैं। तो हम सब बच्चों का भी कितना ऊंच मंजिल है, हमारा पुरुषार्थ कितना ऊंच है, महान है, जो हमें ये डबल इंजन, बाप और दादा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो आज हम ये देखते चलते हैं। सबसे पहले जब से यज्ञ की स्थापना हुई, शिव बाबा ने सबसे पहले किसको माध्यम बनाया? ब्रह्मा बाबा को। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबसे पहले शिव बाबा के जो मत थी, शिव बाबा का हाथ था, उसे दादा लेखराज ने पकड़ करके ब्रह्मा बाबा का, जो शिव बाबा ने टाइटल दिया उन्हें, दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा बना दिया। और वो साथ, शिव बाबा का साथ ब्रह्मा बाबा के साथ अंत तक ऐसा रहा कि उसने ब्रह्मा बाबा को बस संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण अव्यक्त, संपूर्ण कर्मातीत बना दिया। तो आज हम यही देखते चलते हैं कि ब्रह्मा बाबा किस प्रकार से संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके फरिश्ता स्वरूप को धारण करके चले गए। और बाबा जो अब हम बच्चों से चाहते हैं, हम भी बस उसी पथ पर चलते रहेंगे तो हम बच्चे भी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते रहेंगे। तो शिव बाबा ने सबसे, हम सब ने यज्ञ का इतिहास पढ़ा है, यज्ञ की स्थापना जब हुई, ब्रह्मा बाबा को बाबा ने दिव्य साक्षात्कार कराया, सृष्टि परिवर्तन का साक्षात्कार, कि कैसे प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, कैसे सिविल वार के द्वारा, कैसे एटॉमिक वार, अणु युद्ध आदि के द्वारा महाविनाश के दृश्य दिखा करके, और फिर बाबा ने जो, जैसे गीता प्रसिद्ध अर्जुन के मुख से निकला, जब बहुत ऐसा सब देखा तो गीता में वर्णन है, हे प्रभु बस कीजिए, बस अब मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए भगवान, क्योंकि विनाश के दृश्य ध्यान में देखते चारों तरफ हाहाकार मचा है, विनाश हो रहा है। बस ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने जब वो देखा, उनके अंदर में ये इच्छा जागृत हुई, और फिर बाबा ने उन्हें वो साक्षात्कार कराया कि ऊपर से जैसे परम धाम का दिखाया, स्टार 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 बिंदी हैं, आत्माएं नीचे धरती पर आ रही हैं, और क्या हो रहा है, कोई राजकुमार बन जा रहा है, कोई राजकुमारी बन रहे हैं, चारों तरफ स्वर्ग का सतयुगी वातावरण है, अति सुखदायी प्रकृति है, सब रास कर रहे हैं, खेल कूद, हर प्रकार के जीवन में सुख। बस बाबा उसे देख के जैसे गदगद हो गए और तब बाबा के कानों में आवाज सुनाई पड़ी। सुना है ना क्या आवाज सुनाई पड़ी? तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। ये सबसे पहली श्रीमत ब्रह्मा बाबा को जैसे मिली और बस उसे देखते ही फिर जब ध्यान से बाबा नीचे आए और बस ये किसकी आवाज थी, कौन था, मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा, बस कुछ बाबा को स्पष्ट नहीं था। लेकिन बाबा ने शिव बाबा को अपने को ऑफर कर दिया और तब से ये पार्ट खुल गया। शिव बाबा ने भी नाम दिया उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा दी क्रिएटर कहते हैं। और इस किस तरीके से नई दुनिया बनानी है, तो वहां से जैसे श्रीमत का पार्ट शुरू हो गया। ब्रह्मा बाबा को पहले ये कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, बस। तो फिर बाबा ने, हम सब ने यज्ञ का इतिहास पढ़ा है, किस प्रकार से माताएं बहनें कुमारियां इन सब के ट्रस्ट बना, कमेटी बनी और बोर्डिंग हाउस खोला आदि आदि, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज हम विशेष इस बात का ही वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से श्रीमत का हाथ जो है हमें संपूर्ण बनाने में मदद करता है। तो पहले ये श्रीमत। दूसरी बात, हम सभी को किसी न किसी रूप से भक्ति मार्ग का अनुभव है, हर एक ने कोई न कोई भक्ति की है, किताबें पढ़ी हैं, शास्त्र वेद आदि, मंदिरों में गए हैं आदि, तो हम सभी का अनुभव है भक्ति का। क्या जो हमेशा से कहते रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन भाग जाता है, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और जो भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। यही कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और यही बात को गीता में भी कह दिया है, सब ज्ञान सुना के मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। तो सारा खेल ही हमारा मन का है और इसीलिए बाबा की भी मुरली काफी समय से चल रही है। और अभी भी जो बाबा ने इस सीजन में भी होमवर्क दिया था सबको, जो पहले 2 महीने का दिया, फिर और हफ्ते का, और वास्तव में ये होमवर्क अभी हम सब का चल रहा है। कौन सा होमवर्क है? समय और हाँ संकल्प रूपी खजाने को व्यर्थ नहीं गवा। तो संकल्प कहाँ उठता है? मन में। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस खजाने को जमा करते रहो, व्यर्थ संकल्प न उठे। और तो कैसे खजाना जमा होगा? एक तरफ जमा होता जाए और दूसरी तरफ खर्च होता जाए तो जमा तो हुआ ही नहीं है। जितना हमने अच्छा योग किया, जो ज्ञान की बात सुनी आदि जमा किया, लेकिन सारे दिन कार्य व्यवहार में कभी किसी कमजोरी के वशीभूत हो गए, कभी मन भाग गया, इधर उधर जा नहीं चाहते हैं, कई बातें, तो उसमें अगर खजाना हमारा व्यर्थ संकल्प अगर हो गया, व्यर्थ वो खजाना बह गया, तो जमा तो हुआ ही नहीं कुछ। और इसीलिए इमरजेंसी के लिए जो अभी इतना अचानक का समय आने वाला है, बाबा ने कहा बहुत ऐसा समय आएगा जब आपको इस खजाने की आवश्यकता पड़ेगी। लौकिक में भी बैंक में अगर बैलेंस होता है ना, तो खजाना धन होता है, कभी भी कोई आवश्यकता होती है पैसा निकाल के यूज कर लेते हैं, मन थोड़ा निरसंकल्प रहता है। तो इस रीति से ये खजाना अगर हमारे पास जमा नहीं होगा तो कैसे हम यूज करेंगे जब ऐसी परिस्थितियां होंगी। इसीलिए आज आवश्यकता ये है कि वो व्यर्थ जाने से बचाए। और बाबा ने कैसे बचाया, क्योंकि मन ही संकल्प करता है। तो जब बाबा को भी ये हुआ अनुभव कि ये मन संकल्प रूपी खजाने को जमा करना है, मन तो भाग रहा है, लेकिन तो बाबा ने क्या किया सुना है ना, यहाँ पर दो डायरियां रखी हुई हैं जो बाबा ने शुरू शुरू में ही डायरियां लिखी, वो आपने सुनी होगी। एक डायरी में तो यही है कि अपने को आत्मा बाबा ने पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, यानी जो जो लौकिक संबंधी ये बाबा ने पक्का किया। और उसका प्रमाण क्या, हर चीज का प्रमाण होना चाहिए ना कि ये पक्का हो गया। और हमने लौकिक में भी जब विद्यार्थी पढ़ता है उसका प्रमाण होता है, एग्जाम होता है, एग्जाम में जब पास हो जाता है तो यानी ये क्लास से आगे चढ़ाने लायक हो गया। ऐसी हमारे ज्ञान का क्या प्रमाण है कि हमने अपना आत्मा का पाठ पक्का कर लिया। तो बाबा ने ये लिख लिख के और इतना पक्का कर लिया कि जब भी हम लोग बाबा से मिलते थे तो पहले तो बाबा शुरू में आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, बस ऐसे बाबा के मुंह से नैनों से जैसे प्यार टपकता था, बाहें एकदम ऐसे खुल जाते थे और हम सब चुंबक की तरह जैसे खिंच के बाबा की बाह में आ जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा को इतना पाठ पक्का था, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, तो किसी को भी देह का भान ही नहीं रहता था। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बस मेरा बाबा और ये एक आया। फिर और हम लोग भी इतना बाबा को आत्मा का पाठ पक्का हो गया था, बस बाबा ने थोड़ा दृष्टि दी, हम लोग भी विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। फिर बाबा को ऐसे थोड़ा थपथपाना पड़ता था कई बार, और फिर हम जैसे देह में आते थे, फिर बाबा टोली भी खिलाता था, हालचाल पूछता था, और फिर एक जाता था, फिर दूसरा आता था, तीसरे, इस तरह हम सब लोग मिला करते थे। तो बाबा को जैसे ये पाठ पक्का हुआ, और फिर बाद में तो जितना बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ और बढ़ने लगे, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती थी, बस बाबा देखा, बस जरा सी दृष्टि दी और एकदम विदेही हो जाते थे, देह का भान भूल जाता था। तो हम भी अपने को ये देखते चले, बाबा की ये श्रीमत तो है ही कि अपने को आत्मा समझो, हरेक को आत्मा समझो, ये बुद्धि तक तो आया, लेकिन कितना हमारे व्यवहार में आया कि हम जिसको भी देखे ना उसको यही अनुभव होना चाहिए कि हाँ मैं इस शरीर से न्यारी हूँ, विदेही हूँ, अशरीरी हूँ, जैसे बाबा करा देता। बाबा भी तो लौकिक ही था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था, पति पत्नी थे, बच्चे थे, सारा परिवार था, सब कुछ। लेकिन ये सब होते हुए भी जैसे ही बाबा को ज्ञान हुआ, बाबा उस पढ़ाई में लग गया। तो ये हम अपने को देखें कि मैंने भी अपने को पाठ कितना पक्का किया है। बाबा ने पक्का, तो उसका एक ये प्रमाण है, किसी को भी हमें हमारी तरफ देखने से देह का भान न हो, सबको यही हो ये आत्मा, बस हमें, हम उसको वो अनुभूति तभी करा सकेंगे जब हमने ये अनुभूति पक्की की होगी। और बाबा के अलावा हम दादी जी को भी देखते थे, कोई समस्या के वशीभूत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई टेंशन कोई होता था, जाते हैं बड़ी दादियों के पास, बस दादियां जरा सी दृष्टि देती है, एकदम उस तनाव से मुक्त हो जाते हैं। बाबा ने भी होमवर्क दिया हुआ है इस सीजन का भी, लास्ट ईयर बाबा ने बोला ना, अभी बाबा हर बच्चे को क्या देखना चाहता है, तनाव मुक्त देखना चाहता है, टेंशन फ्री देखना चाहता है। परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगी, लेकिन तनाव ना हो, टेंशन ना हो, टेंशन नहीं होगा, चेहरा हमेशा खुश रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। और उसका प्रमाण बाबा ने कहा, हर बच्चे को तनाव मुक्त देखना चाहता है। और फिर बाबा ने उसी में ही बोला कि तनाव मुक्त अर्थात कमल फूल और गुलाब के फूल की तरह। तो संगम युग में हमारी यात्रा, हमारा जीवन जो शुरू होता है कमल फूल से शुरू होता है। कमल फूल का तो हम सब जानते हैं ना, कीचड़ में रहता है, न्यारा रहता है। ऐसे ही घर गृहस्थी में हमें रहना है और न्यारा, विकारों से, उन सबसे अलग। तो वहां से तो हमारा ब्राह्मण जीवन शुरू हुआ, लेकिन अंत हुआ गुलाब के फूल पर। तो गुलाब के फूल में क्या विशेषता होती है, देखो गुलाब का फूल होता है ना, उसको थोड़ा सा यूं करो, जरा सा हिलाओ, सब पंखड़ियां झड़ जाएंगी। अलग अलग सिर बीच में जो होता है उसके साथ हर पंखड़ी लगी रहती है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, भले रहते संगठन में इकट्ठे हैं, लेकिन सबका कनेक्शन बीच वाले उससे होता है और वहां से, और थोड़ा सा यूं करो अलग। तो बाबा भी ये चाहता है अंत में हमारी ऐसी स्थिति हो कि हमें रहना तो संगठन में ही है, अपने दैवी परिवार में ही रहना है, लौकिक परिवार में सबके साथ, लेकिन हमारा कनेक्शन बुद्धि का सिर्फ एक शिव बाबा के साथ हो। अंत में बुलावा आए, आओ बच्चे, अब परम धाम का दरवाजा खुल गया, चलो। बस कोई भी लौकिक संबंधी के साथ, किसी के साथ कोई भी अटैचमेंट न रहे बुद्धि का, हाँ बाबा हम तैयार हैं, चलो बाबा चलते हैं। इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से हम शरीर छोड़ के जा सके, ये गुलाब के फूल का है, सबका कनेक्शन बीच वाले से रहता है। तो एक ये बाबा की जो श्रीमत मिली हुई है, अब समय ऐसा आ रहा है और जाने का समय, तो अब हमें ये चेक करते चलना है कि इस रीति से मेरा बुद्धि योग अटेंशन, इसीलिए बाबा ने कहा है एवर रेडी, अचानक के साथ साथ एवर रेडी सदा। तो जब तैयारी कोई भी चीज की होती है तो सब चीज, एक एक चीज देखी जाती है, घर में बच्ची की शादी होती है या कोई मुंडन या कोई भी कार्यक्रम होता है, सब तैयारी करते हैं, भाई इतने मेहमान आएंगे, उनका खाने पीने का, रहने का क्या क्या विधि होनी है, सब तैयारियां करते हैं ना। ऐसे ही अपने को कभी एकांत में बैठ के देखो, मेरी बुद्धि कहीं जाती तो नहीं है, चेक करो, क्योंकि बुद्धि को अनेक द्वार हैं, मन को अनेक द्वार हैं। तो इसीलिए बाबा ने सबसे पहले क्या किया, एक तो वो डायरी लिख करके पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूं, और दूसरा पाठ बाबा ने ये पक्का किया जो बाबा हमेशा कहता है, क्या कहता है, इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, मन बुद्धि संस्कार की। कैसे लगाई बाबा ने दरबार, वो दूसरी डायरी में लिखा हुआ है, 1936 की, उस समय की बात है। और बाबा ने जब देखा होगा, ज्ञान हुआ, बाबा ने ध्यान साक्षात्कार कराया, लेकिन मन तो भागता ही है, मन भागता है, तो इसीलिए बाबा ने मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, कर्मचारी है, लेकिन तू इतना शक्तिशाली हो गया कि मुझ राजा को तुमने अपने वश में कर लिया, और तू जहां जहां कहता रहा, भागता रहा, मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा, यद्यपि मैं राजा हूं, लेकिन तू मंत्री ने मुझ राजा को अपने वश में कर लिया, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया, मैं राजा हूं। बाबा ने बार बार अपने को इस स्वमान में स्थित किया, मैं राजा हूं, मन मेरा कर्मचारी है, मन को मेरे कहने पर चलना है, ये कहने से नहीं कि भाई क्या करें मन भाग जाता है, नहीं, मन मेरे अंडर में है, मन को मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं मन के कहने पर नहीं चलूंगा। तो ये बाबा ने जब अपने को स्वमान की सीट पर स्थित करा, उसके बाद से मन बाबा के वश में हो गया। तो बाबा यही चाहता है कि अब हम भी इसी स्वमान की सीट पर स्थित हो करके बस मन को और बुद्धि को ऑर्डर करें। ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को पत्र लिखा, हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर, मन के साथ साथ मन के पीछे चलती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमजोर बना दिया, और मैं भी तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन हे मन और बुद्धि, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि मैं आत्मा राजा हूँ, मेरे कहने पर तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। तो ऑर्डर करो। हम पराधीन होके कहें क्या करें, मन वश में हो जाता है, मन चंचल है, भाग जाता है, नहीं, ऑर्डर करो मन को। जितना ऑर्डर करेंगे उतना फिर मन हमारे वश में रहेगा। लेकिन मन भी कब बात मानेगा, जब हम समान की सीट पर होंगे। लौकिक दुनिया में भी जब ऑफिसर अपनी सीट पर होता है, कर्मचारी लोग उसकी बात मानते हैं। जब वो रिटायर हो गया या दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया या वहाँ सीट पर नहीं है, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। तो हम भी जब समान की सीट पर स्थित अगर नहीं होंगे और मन को ऑर्डर करेंगे तो मन बात न भी माने। लेकिन हम अपने समान, अनेक समान बाबा ने दिए हैं, कोई भी समान को स्मृति में लाए, ओ मैं विजयी रतन हूँ, मन को मेरी बात माननी है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बस ऐसे अच्छे अच्छे सोमान जो बाबा ने इतने सोमानों की लिस्ट दी है, उनको अपने लाते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बाबा ने जो प्रैक्टिकल शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया, तो ये श्रीमत हम अपने सामने सदा रखेंगे। तो क्या होगा, जो बाबा ने मन की श्रीमत दी है, मन जीते जगत जीत, तो हमारा ये पुरुषार्थ सदा चलता रहना चाहिए कि मन को मुझे जीतना है। बस कह के नहीं छोड़ देना है, मन को जीतना। और क्या पुरुषार्थ बाबा ने किया, जब एंड रिजल्ट सामने होता है, मुझे ये बनना है, ये बनने वाला हूं, तो फिर वैसा ही पुरुषार्थ होने लगता है। बाबा को भी ये अंत का ये मालूम था, क्या, बस मैं कल जाके श्री कृष्ण बनूंगा, ये अंतिम जन्म है, पुराना जन्म है, पुराना शरीर है, इस शरीर के पेपर। बाबा को भी इतनी उम्र थी, खांसी भी आती थी कई बार, और बस खांसते खांसते कई बार बाबा को देखने में आता था, लोगों को बड़ी तकलीफ जैसे हो रही है, 90, 92, 93 वर्ष की आयु थी बाबा की। लेकिन बस जिस क्षण आई, अब बाबा उसी बात को लाइटली हंसी में, अरे बच्चे देखो मैं शिव बाबा से कहता हूँ कि बाबा मुझे इस खांसी से छुड़ाओ, ये मेरी सखी है, तो ये सखी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, सदा मेरे साथ साथ रहती है, देखो तो बाबा कहता था, मैं शिव बाबा को कहता हूँ बाबा इस सखी से मेरा पीछा छुड़ाओ, तो शिव बाबा क्या कहता था, बच्चे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, ये तो तुम्हें ही चुकतू करना है, इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। अगर बाबा तुम्हारे साथ कोई स्पेशल कंसिडरेशन करे, तो बाबा के तो इतने सारे बच्चे हैं, हर एक को बाबा को उसको कर्म भोग से छुड़ाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहता था इससे तुम्हें ही निबटना है, तुम्हारे अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। तो जब ब्रह्मा बाबा को नंबर वन आत्मा को कोई कंसिडरेशन और कंसेशन नहीं, तो आपको या मुझे कोई कंसेशन होगा क्या? तो इसीलिए कोई भी पेपर आए, शरीर का आए पेपर, कोई भी परीक्षा आए, उसमें कभी भी अपनी खुशी को कम नहीं करना है। और यही बाबा का श्रीमत है, बच्चे किसी भी हालत में खुशी कम ना हो। हमेशा बाबा व्यक्त मुरली में साकार में भी बोलते हैं। बाबा कैसे कायम रखता था खुशी को पता है? बस जब बाबा को ये खांसी आती थी, बच्चे देखो अभी ये है तकलीफ, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण, बाबा के पास में ट्रांसलाइट का चित्र रहता था, कृष्ण का फोटो, कल बाबा जाके ये बनेगा कि कैसी दुनिया होगी, देखो बच्चे सब तरफ खुश सुखी शांत आनंद, बस मजा ही मजा होगा, कितनी प्रकृति दासी होगी, और कल बाबा जाके ये बनेगा। तो बच्चों को बस बाबा के चेहरे पर एक सेकंड पहले ही जो खांसी का वो देखने में आता था, लेकिन बाबा का रूप कभी नहीं बदलता, वो शरीर से आती थी लेकिन बाबा के चेहरे पर वही चमक वही खुशी वही, और बस कल जाके बाबा ये बनेगा। बच्चे खुशी में क्या करना चाहिए, खगिया मारनी चाहिए, ये एक सिंधी शब्द है, फिर बाबा कई बार दिखाता था, बच्चे मालूम है कैसे खग्गी मारते हैं, हम लोग कहते थे नहीं, अरे बच्चे देखो ये है, कल बाबा जाके ये बनेगा, हो जैसे ऐसे बाबा को चेहरे पर इतना खुशी रहती थी, इतनी खांसी भी हो, व्याधि हो, तकलीफ हो कुछ, लेकिन वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट नहीं होता था, चेहरे पर वो ही खुशी की भावना, बस ऐसे ओ कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, ऐसी दुनिया में जाएगा, बच्चे कैसी दुनिया होगी, बस ये पाठ हमें बाबा से और पक्का करना है, ये श्रीमत है कि कभी भी हमारी कोई भी परिस्थिति में खुशी गायब ना हो, ये प्रत्यक्ष देखने में आता था। और साथ साथ में क्या होता था कि बाबा का ना भाई ये खुशी कब रहेगी, जब अंत एंड रिजल्ट साथ में होगा। और इसीलिए बाबा ने एक स्लोगन हम सबको दिया है, हम सब जानते हैं कि अंत मते सो गति का है, जब हमारे प्राण इस शरीर से निकलें, जाना तो सबको ही है, या किसी का ऐसा प्लान है मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाना है, सतयुग में जा सकते हैं, वो स्वर्ग भी नरक बन जाएगा अगर ये शरीर पुराना पांच तत्वों का जो तत्व भी तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाबा इसीलिए कहता है तुम्हें बच्चों को प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। तो अंत मते सो गति ये गायन अगर होगा तो क्या हो, ये जो गायन है हमारी बुद्धि में अगर सदा ये रहेगा, अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसी गति होगी, तो जितना जितना हमारे बुद्धि में ये लक्ष्य क्लियर होगा कि बस हमें कर्मातीत बनना है अंत में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, समय भी वेस्ट नहीं होगा और संकल्प भी वेस्ट नहीं होंगे। जब कम समय में ज्यादा काम करना होता है, कोई घर में प्रसंग है, शादी का है, कोई भी किसी प्रकार का, और पहले से भी काम चलता है, जितना जितना टाइम पास में आता जाता है और तेजी से काम करते हैं, और कल ही अगर वो काम होता है तो आज रात को सोए भी नहीं, रात भर काम करें चाहे, और क्योंकि कल ही वो प्रसंग है। तो ऐसे ही अपने बुद्धि में ये रखना है कि मुझे कर्मातीत बनना है, और जितना ये बुद्धि में रहेगा ना उतना क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, संकल्प वेस्ट नहीं होगा। बाबा को मैं देखने में आता था, कैसे बस पार्टी जैसे आती है, अभी भी पार्टी आती है, दादियों से मिलते हैं, गिफ्ट लेते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, बस अभी तो भीड़ ज्यादा हो गई है, बस सीधा सीधा दृष्टि लेके टोली लेके चले जाते हैं। लेकिन बाबा के समय में तो इतने बच्चे थे नहीं, बाबा के समय में कम होते थे तो पार्टियों को टाइम दिया जाता, अच्छा 10 बजे मानो कलकत्ता वाली पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे बम्बई वाले, 11 बजे पंजाब वाले, आदि आदि ऐसे टाइम होता था। तो देखते थे बाबा के पास ब्राह्मणी टाइम के मुताबिक पार्टी लेके आई, बाबा मिलते थे, या तो ऊपर आप गए होंगे मधुबन में, तब तो मधुबन ही था, ज्ञान सरोवर या शांतिवन ये सब तो कुछ था नहीं, तो मधुबन में या तो बाबा अपने झोपड़ी में मिलते थे, या हिस्ट्री हॉल है वहाँ मिलते थे, या कभी कभी एक दो बच्चे ही होते थे, 2-3, तो बाबा का बड़ा छोटा कमरा, अभी तो बड़ा बनाया है, उस समय बहुत छोटा कमरा था जहाँ एक चारपाई और बस एक मेज जैसे आ जाती थी, और नीचे बाबा का वो गद्दा जैसे बिछा जहाँ बाबा बैठ के तपस्या करते थे और वहाँ मिलते थे। तो वहाँ पर बाबा से जब जब भी पार्टी जाती थी तो ब्राह्मणी जाती थी, पार्टी लेके देखा बाबा, बस आंख खुली हुई है, बाबा बैठे हैं, तो भले बाबा की देह यहाँ है लेकिन बुद्धि कहीं और होती थी। ब्राह्मणी जाती थी कई बार देख के, बाबा बाबा, जब बाबा को कहते थे तो कई बार बाबा को थोड़ा जर्क सा लगता था, और फिर जैसे बाबा बुद्धि से ना नीचे कोई आते थे और तब देख के, अच्छा अच्छा बच्ची पार्टी लाए हो, आओ बैठो, क्या क्या, एक एक पार्टी वाले से मिलते थे, नाम पूछते थे, टोली खिलाते थे, बच्चों को गोद में लेते थे, और इस प्रकार से एक एक वन बाई वन करके सब पार्टी मिलती थी। तो देखो बाबा को ये अभ्यास कितना, और जब पार्टी सब मिल लेती थी और पार्टी जाती थी, बीच में 5-10 मिनट का भी समय होता था ना, पार्टी चली गई और दूसरी पार्टी के आने में थोड़ा टाइम है, फिर बाबा जैसे इस देह से न्यारे हो जाते। तो बाबा ने ये पाठ पक्का कर लिया था कि एक सेकंड में देह से न्यारे, और फिर पार्ट बजाने के लिए एक सेकंड में फिर से देह में आ जाते थे। बस ये पाठ और हम लोगों को पक्का करना है कि हम देह से न्यारे भी अपनी इच्छा से हो जाएं, जब भी थोड़ा समय मिले, फ्री है, कुछ भी है, एकदम बस देह से न्यारे हो गए, बाबा से रूरवान चल रही हुई। पांच स्वरूपों का वर्णन बाबा ने इसीलिए ही तो हम बच्चों को बुद्धि से अभ्यास कराया है कि कभी फरिश्ता स्वरूप में पहुंच जाएं, कभी परम धाम में, कभी सतयुगी नई दुनिया में, कभी अपने वरदानी देवता द्वापर युग में मंदिर में, जैसे हमारी मूर्ति है और हमारे सामने भक्तों की भीड़ है, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी संगम युग में बस बाबा की छत्र छाया के नीचे। तो ये अलग अलग स्वरूपों का वर्णन इसीलिए ही बाबा ने करवाया है कि मन के ऊपर हमारा नियंत्रण रहे, कि बस जहां हम मन को स्थित करना चाहें वहां स्थित करें। तो इससे क्या होगा, अंत मते सोगति होने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो ये पाठ कि बस एक सेकंड में देह में आए, एक सेकंड में देह से न्यारे हो गए, ये पाठ पक्का कर ले। ये बाबा की श्रीमत है। बस पार्ट मिला, पार्ट बजाया, जो भी ड्यूटी है, ऐसा तो है नहीं नौकरी धंधा ड्यूटी सेवा छोड़ देनी है, वो भी करना है, लेकिन अपनी कमाई भी करनी है, जितने भी थोड़ा टाइम मिले फिर देह से न्यारे होके बाबा के पास चले जाए। ये बाबा को पाठ इतना पक्का था। और बाबा का क्या देखा, जितना जितना ये मन वश में होता जाएगा ना, उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान ये देखने को मिली हमें, जैसा बहन जी ने बताया परिचय में, हमें एक विशेष सौभाग्य मिला है। मतलब 1962 में ज्ञान में आए और 62 से 69 तक, वैसे तो बाबा से कई बार मिलना हुआ, बाबा से मधुबन में भी कई बार आना हुआ, बाबा कानपुर आए वहां मिलना हुआ, बाबा दिल्ली आए वहां मिलना हुआ, हर जगह बाबा के पास मिलना। लेकिन सबसे सौभाग्य की बात यह है कि जब बाबा संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के एकदम निकट थे, 17 और 18 जनवरी 1969 को, तो हम बहुत दूर पोस्टेड थे आसाम में, लेकिन बाबा ने जैसे बुला लिया और दो दिन हम बाबा के साथ ही साथ थे 1969 में। और बाबा की जो कर्मातीत अवस्था देखी ना, और हम सबको भी कर्मातीत अवस्था को पाना है, तो उसमें जो बात ऑब्जर्व करी वो मैं आपको खास बताना चाहता हूँ कि इतनी दूर से आए थे, हम सोचते थे बाबा से मिलेंगे अब, और मन में ये सेवा की बात पूछेंगे, ये पुरुषार्थ की बात पूछेंगे, बस जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे बाबा यूं दवा दृष्टि दी, और दृष्टि देते ही, अच्छा बच्चे ये संकल्प लेके आए हो, ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी मन के क्या प्रश्न हम पूछने आए हैं वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस एकदम ऐसा बाबा का अपने मन के संकल्पों पर जिसका पूरी विजय हो जाएगी ना, बस वो दूसरे के संकल्पों को भी तुरंत पढ़ सकता है। और ये किस लिए होता है, जैसे पानी होता है ना, पानी बिल्कुल साफ हो, कोई पानी में हलचल ना हो, लहरें ना हो, तो हम अपनी छवि भी पानी में देख सकते हैं, लेकिन उस पानी में जरा सा एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो, कोई भी चीज, लहरें पैदा होंगी तो हमें अपनी छवि स्पष्ट दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे ही अगर हमारे मन में संकल्पों रूपी लहरें होंगी ना, तो हम दूसरे के संकल्पों को पढ़ नहीं सकते यथार्थ, क्योंकि हमारे अपने संकल्प भी उसके संकल्पों में मिक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें धीरे 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 अपने संकल्पों के ऊपर इतने विजय प्राप्त करते चलने। तो ये बाबा का अंत में लगभग 6-7 बार दो दिन के अंदर बाबा से मिलना हुआ, और बस बाबा के सामने ये जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, उस समय और कोई बाहर की पार्टी थी नहीं, 17-18 जनवरी 1969, तो बहुत बार जब बाबा से मिले हर बार यही अनुभव किया, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा। और 18 जनवरी को जब बाबा रात्रि क्लास करा रहे थे, अंतिम क्लास ब्रह्मा बाबा के थ्रू, हम भी सामने बैठे हुए थे हिस्ट्री हॉल में, आप लोगों ने देखा होगा, बस बाबा क्लास कराने आए, क्लास कराई बाबा ने, तभी मुरली सुनते सुनते हमारे मन में एक संकल्प आया। क्या संकल्प आया? कि बाबा मुरली तो चला रहे हैं, लेकिन हमारा नाम लेकर भी हमारे लिए कोई पुरुषार्थ की विशेष बात बोल दे, नाम लेकर के। बस संकल्प ही आया तो देखो, जो इष्ट देव होते हैं ना, वो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये तो हमने भक्ति मार्ग में पढ़ा है। तो जैसे ही मन में संकल्प आया, बाबा तक संकल्प पहुंचा, क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था के बिल्कुल निकट आत्मा थी, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया था, तो बस संकल्प कैच किया होगा बाबा ने, और तुरंत ही 18 जनवरी की रात्रि क्लास की मुरली, जिनकी कैसेट भी ये मिलती है मधुबन में, तो बस बाबा ने तुरंत नाम लेके ही महावाक्य कुछ उच्चार दिए, जो हमारे लिए हमेशा ही गाइडिंग फोर्स बन गए, हमेशा ही जीवन के लिए मार्ग प्रदर्शक बन गए। तो देखो, मन के अंदर संकल्प आया और तुरंत संकल्प बाबा को कैच हुआ। अंत में बाबा हम बच्चों से भी यही कामना रखता है, हमारे सामने भी दुनिया की बहुत आत्माएं आएंगी, अनेक इच्छाएं लेकर के आएंगी, और अंत में चारों तरफ जब त्राही त्राही होगी, दुख होगा, अशांति होगी, तो बाबा ने कहा है, आपके सम्मुख रोती हुई आत्माएं आए, हंसती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए, सुख के सागर में लहराते हुए चले जाए, अशांति की स्थिति में स्थित होकर आत्माएं आए, बस शांति के सागर में लहराते हुए चले। हम उनका रूप परिवर्तन करते हैं, जो उनकी मनोकामनाएं है वो मनोकामनाएं हम कब पूरी कर पाएंगे? जब हमारे मन के अंदर अपनी कोई इच्छाएं नहीं होंगी, हम स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या बन चुके होंगे। तो अभी अपने अंदर ये भी चेक करते चलना है कि मेरे अंदर कोई भी इच्छा है ना, जो भी बाबा ने ना परसों भी मुरली में बोला ना, कौन सी मणि बनो? संतुष्ट मणि। यानी हमें ये भी हो, ऐसा हो, वो हाँ, हमारे प्रति जब हम संसार को सकाश दें, पूरे सृष्टि को बाबा ने कहा प्रकृति के तत्वों को शक्ति देनी है, सकाश देना है, वो करे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे मन में हम बाबा को याद करने बैठे हुए हैं उस समय कोई सेवा का ख्याल आ जाए। सेवा का ख्याल भी कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन मन हमारे वश में तो है, ये तो प्रतीक नहीं है, क्योंकि हम योग लगाना चाह रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं, शक्ति बाबा से लेना चाह रहे हैं, और उस वक्त सेवा के अगर ख्याल आ गए तब तो भले विकर्म नहीं बनेंगे, लेकिन जो हम शक्ति लेना चाहते हैं, जो बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग, ज्वालामुखी नाम कैसे पड़ा है मालूम है? एक हिमाचल प्रदेश में एक देवी है, उसका मुंह से हमेशा ज्वाला निकलती रहती है, मंदिर है ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं, हमेशा मुख से ज्वाला निकलती रहती है। तो बाबा कहते हैं आपके भी मुंह से ज्वाला, यानी कि मुंह से ज्वाला का भाव क्या है? अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है अग्नि में। तो ऐसे ही हमारा भी योग अग्नि ऐसी जली हुई हो कि हमारे सम्मुख जो आत्मा आए, और जैसा बताया मानो कोई अंत में साक्षात्कार की इच्छा लेके आई है, चार आत्माएं आई मानो मेरे सम्मुख, एक की इच्छा है हनुमान का साक्षात्कार हो, एक की इच्छा है कृष्ण जी का साक्षात्कार हो, एक की इच्छा है सरस्वती का साक्षात्कार हो, जो जो जिसका भक्त है उसकी अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा होती है। अब हम तो एक ही हैं, हमारे द्वारा एट ए टाइम चार चार कैसे साक्षात्कार होंगे? वो तब होंगे, साक्षात्कार कराने की चाबी तो एक शिव बाबा के ही पास है। तो हम सब ने यज्ञ इतिहास में पढ़ा है ना, जब शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो कृष्ण की आत्मा है, ब्रह्मा बाबा से तो सबको कृष्ण का साक्षात्कार होता था, स्वर्ग का, नई दुनिया का, लक्ष्मी नारायण का, सब रास करते थे, खेलते कूदते थे, क्योंकि वो कृष्ण की आत्मा है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यज्ञ के इतिहास में भी लिखा है कि शुरू में विरोध भी होता था। तो एक बार एक सरदार जी आए, बहुत विरोधी थे, तो वो ज्ञान में नहीं चलते थे और अंदर छुरी लेकर के आए थे कि आज मैं बाबा को इससे मारूंगा। तो बस बहनों से कहा कि हम बाबा जी से मिलना चाहते हैं। बहने तो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बाबा के कमरे में उन्हें ले गए और वहाँ बैठा दिया और बहने अपना काम में लग गए। तो जब वो अलग था, एक अंत में था बाबा और वो थे दोनों ही, तो उसने अपना छुरा निकाला। ये यज्ञ के इतिहास में किताब में लिखा है, आप सबने पढ़ा होगा। तो जैसे ही वो बाबा को मारने वाला था तो क्या हुआ, उसे साक्षात्कार हुआ। किसका? गुरु नानक देव जी का। अब बाबा गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं है, कृष्ण की आत्मा है, लेकिन क्यों गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ? क्योंकि वो सरदार था, उसका इष्ट देव गुरु नानक थे, और अगर उसे कृष्ण जी का साक्षात्कार होता तो उसकी श्रद्धा भावना बैठती नहीं, वो तो हानि पहुंचा देता। गुरु नानक देव जी का जैसे ही उसे साक्षात्कार हुआ, वो तो एकदम भौंचक्का रह गया। ओहो गुरु जी, मैं क्या करने जा रहा था, आपको नुकसान पहुंचाने जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसने वो छुरा बाबा के पैर के पास रख दिया। मुझे माफ करो गुरु जी, और मैं तो कितना बड़ा पापी हूँ, और इस तरीके से फिर वहां रख के बाबा को नस्तक झुका करके और वो वहां से चला गया। तो शिव बाबा भी हमारे द्वारा जो आत्माएं आएंगी और जिसमें उनकी श्रद्धा होगी वैसा साक्षात्कार कराएगा, बस प्रोवाइडेड हमारा ये तन और मन ये शुद्ध और पवित्र, सच्चा और साफ। क्योंकि हमारे तन के द्वारा साक्षात्कार होगा तो तन भी विकार रहित। अब तन का जन्म तो अपवित्रता से ही हुआ है, लेकिन इसीलिए बाबा कहता है कि रोज प्रकृति के तत्वों को भी शुभ भावना शुभ कामना का दान दो, क्योंकि यही प्रकृति के पांच तत्व है सतयुग के आदि से लेकर इन्हीं के द्वारा जो हमारा शरीर हमें मिलेगा, ये हमारे सबसे निकट के साथी हैं। ये पांच तत्व, इनसे जो शरीर मिलेगा सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक भिन्न भिन्न नाम रूप में पार्ट बजाएंगे। इसीलिए एक ये करते चलना है, देखते चलना है कि किस तरीके से हमारा प्रकृति के तत्वों पर हम अपना वो करते जा रहे हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि बस फुल स्टॉप लगाने की विधि हो। जो भी व्यर्थ समय क्यों जाता है, संकल्पों का देखा, समय भी व्यर्थ क्यों जाता है, क्योंकि कई बार व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। और क्यों चलते हैं, जब हम अपने परिवार में होते हैं तो परिवार में किसी की कोई बात देखते हैं तो हमारे मन में निगेटिव, अरे ये तो इतना 20 साल पुराने, इसमें भी ये क्रोध है, अरे ये 15 साल पुरानी बहन, इसके अंदर भी ये संस्कार है। बस उनकी कोई भी कमी कमजोरी को देखते हैं, हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। तो बाबा ने कहा इसके लिए क्या विधि बताई है बाबा ने, व्यर्थ संकल्प न चले। तो बाबा ने ये कहा है कि मेरा जो लास्ट में लास्ट बच्चा भी है, क्या है वो, भगवान की चुनी हुई आत्मा है। भगवान ने उसका सिलेक्शन किया है, जो आज के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या बड़े से भी उससे भी महान है, मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी। तो हमें हरेक को आत्मा, जिसको भी देखें, जिसमें भी कमी देखें, उसे हम वर्तमान की दृष्टि से न देखें, हर व्यक्ति को हम तीन कालों की दृष्टि से देखें। आज ये आत्मा मानो इसमें ये कमजोरी है, वर्तमान में ये कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन ये आत्मा वही है जो सतयुग के आदि की सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, ये वही महान आत्मा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसे चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, भगवान की चुनी हुई आत्मा है। तो हर आत्मा को हम अभी इतनी महान आत्मा, वर्तमान समय इसका ये पार्ट है, फिर अभी अंत में यही फरिश्ता स्वरूप होके बस चली जाएगी, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप जो आत्मा के गुण हैं। वो बड़े बड़े हीरो होते हैं, एक्टर होते हैं, लेकिन अगर वो भिखारी का भी पार्ट बजाएंगे ना तो देखने वाले ये थोड़ी भूल जाएंगे कि ये फलाना एक्टर है, वो भिखारी का पार्ट बजा रहा है। जैसे ही वो पार्ट पूरा हुआ, फिर से अपना ओरिजिनल ड्रेस में, अपनी कार में, अपने शाही ठाट के साथ वापस चला जाएगा कपड़े बदल करके। ऐसे ही हम कभी भी किसी को वर्तमान की दृष्टि से ही नहीं देखें। बाबा भी देखो देखता है ना, बस अरे मेरे बच्चे कितना बाबा महिमा करता है, बस यही मेरे कलप पहले वाले सिकिल अधे बच्चे, नैनों के नूर, बाबा की मस्तक बड़ी, बाबा के दिल तक पर विराजमान आत्माएं, कितना बाबा। साधारण रीति से हम बिल्कुल साधारण भी हैं, फिर भी बाबा हमें इतने महान रूप से देखता है। तो हमें भी हर एक को बहुत महान रीति से, तो जो परिवार के कारण, संबंधों के कारण जो कोई व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो संकल्प नहीं चलेंगे और हम अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो बाबा ने कोई भी श्रीमतें दी है ना, तो इन श्रीमत के आधार पर बाबा का हाथ और साथ अगर हमारा रहेगा तो सदा विजय हुई पड़ी है। इसीलिए हम प्रतिदिन अपने को यही स्मृति दिलाएं, मैं विजयी रतन जो बाबा ने कहा। बाबा कल पहले भी आपने हमें विजय दिलाई थी, अभी भी आप विजयी बना रहे हो और कलप कलप आप हमें विजयी बनाते रहेंगे। बाबा बहुत थैंक्स आपका, बाबा के इतने गुण गाए, ये नहीं कि मुझे विजयी बनाओ, नहीं, मैं वही कलप पहले वाली विजयी आत्मा हूँ, फिर से बन रही हूँ। उस स्मृति को फिर से हम मन के अंदर लाते हैं और अंत में ये तत्वों का, क्योंकि बाकी सब तो हम कर रहे हैं, ज्ञान योग भी कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, अमृत वेले भी उठते हैं, सारा परिवार सेवा भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन तत्वों को हम कैसे पावन बनाए बन रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। तो देखो 18 जनवरी को बाबा मुरली चला के अंत में गए और बस जाके बाबा दरवाजे तक गए, रुके, फिर बाबा पीछे मुड़ के देखने लगे, फिर हर एक बच्चे को बस बाबा एक एक को दृष्टि देते थे। क्यों? क्योंकि बाबा को मालूम था ये आज मेरा इस ब्रह्मा तन के द्वारा ये अंतिम साकार मिलन है, बस। और फिर ये अंतिम साकार मिलन के बाद तो कर्मातीत अवस्था को ब्रह्मा बाबा को पाना ही था। तो इस रीति से बाबा एक बार, दो बार, तीन बार हुए हिस्ट्री हॉल में, दरवाजे के बाहर जाते ही फिर बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ये बाबा ने पहले कभी नहीं बोला, उसी दिन ही बोला। तो ये कर्मातीत अवस्था का ये और भी है, जैसे भीष्म पितामह का गायन है ना, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो बाबा को भी जैसा ये आवाज, बस अब हम जा रहे हैं ये शरीर छोड़ के कर्मातीत अवस्था को पाके, बाबा हम आए। इसीलिए बाबा ने हर बच्चे से जैसे छुट्टी लेके विदाई, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये कह के बाबा कमरे में गए और बस जैसे शरीर से मक्खन से बाल की तरह बाबा ने देह त्याग किया। लेकिन विशेषता क्या रही वो मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि बाबा 18 जनवरी की रात को बाबा ने देह का त्याग किया। 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, ये पूरा बाबा का शरीर इतने टाइम तक रखा रहा, लेकिन बिल्कुल शरीर में कहीं भी कोई कालापन नहीं आया, दुर्गंध नहीं आई, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई भी बाबा को लेप नहीं लगाया गया, कुछ नहीं, लेकिन बस बाबा का शरीर वैसे ही चमकता। और जब हम लोगों ने 21 तारीख को अग्नि संस्कार से पहले स्नान कराया तो बाबा के शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं थी। आत्मा जब छोड़ के जाती है कुछ घंटे के बाद भी शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, लेकिन बाबा ने इन 5 तत्वों को भी इतना पावन कर लिया था कि 65-70 घंटे के बाद भी शरीर रखा रहा लेकिन शरीर बिल्कुल वैसा ही फ्लेक्सिबल, वैसा ही चमकता हुआ, कोई दुर्गंध नहीं, वह लगता था जैसे बाबा विश्राम कर रहे हैं और बाबा हमेशा की तरह उठेंगे और कहेंगे आओ बच्चे, आओ मेरे बच्चे, चमकता हुआ शरीर वैसा ही। ये है प्रकृति जीत बनने का लक्षण। और जो बाबा ने श्रीमत दी है कि प्रकृति के एक एक तत्व को भी आपको पावन बनाना है, रोज उनको, उनके द्वारा हम उनको शुभ दान दें, हे धरती माता, हे आकाश, हर एक से हम गुण उठाते चले, तो ये प्रकृति के तत्वों के अनुरूप हम अपने को बनाते चलेंगे। क्या है जल का विशेष गुण? देखो जल होता है फ्लेक्सिबल होता है, जल को गिलास में लो गिलास का रूप धारण कर लेगा, कटोरी में लो कटोरी का रूप धारण कर लेगा, चम्मच में लो चम्मच में सेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपने को इतना एडजस्टेबल नेचर बना लें, इनके साथ भी सेट हो सके, इनके साथ ऐसा न कहे भाई इनके साथ तो सेट होना बड़ा आसान है, इनके साथ सेट होना बड़ा मुश्किल है। नहीं, हमारा स्वभाव इतना फ्लेक्सिबल हो, हर एक के साथ जल की तरह अगर हम सेट हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, जल जैसे सदैव आगे बढ़ता रहता है, हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन वो ही जल जब कहीं रुक जाता है ना, तो क्या होता है, उसमें ही बदबू आने लगेगी, उसमें ही मक्खी मच्छर कीड़े पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम कहीं रुक जाते हैं ना, तो हमारे अंदर भी ईर्ष्या द्वेष अहंकार कोई ना कोई बात पर चिंतन पर निंदा, ये बात ये कीड़े पैदा होने लगते हैं जो हमारे आगे के प्रोग्रेस को रोक देते हैं। तो अगर हम जल का यही गुण धारण कर लेंगे, मुझे फ्लेक्सिबल रहना है और जल की तरह सदा शीतल रहना है, क्रोध अग्नि अहंकार ईर्ष्या द्वेष किसी के वशीभूत नहीं होना, ये विकारों की अग्नि है, तो क्या होगा, फिर मैं जल को जैसे अपना मित्र बना लेंगे और जल तत्व जो है अंत समय में भी हमें पूरा सहयोग देगा। जितना फ्लड आएगी सुनामी होगी कोई भी हो, जल के कारण हमें नुकसान नहीं होगा, हमारी मृत्यु का कारण जल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जल के साथ हमने अपने संस्कारों को मिला लिया है, जल से मित्रता कर ली, और मित्र कभी भी मित्र के प्राण नहीं लेता। ऐसे ही धरती, धरती का मेन गुण क्या है, धरती दाता है। एक बीज धरती में बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, देने वाली दाता है। ऐसे ही धरती की तरह अगर हम सदा दातापन का गुण अपना के चले, दाता माने कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, लेकिन कोई भी हमारे सम्मुख आए उसको शुभ भावना शुभकामना प्रेम सत्कार आदर मीठा बोलना, ये चीज भी जिसमें तो खर्चा होता ही नहीं कुछ, जितना जितना हम दूसरे का दिल लेके चलते रहेंगे, स्नेह प्रेम आदर भाव, तो जैसे धरती के साथ हमने अपने गुणों को मैच कर लिया, धरती की तरह हम सहनशीलता का गुण धारण कर लेंगे, तो ये धरती जो है कभी भी हमारी दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। जितना अर्थक्वेक आएगा जमीन हिलेगी, आसपास का कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने ये धरती का ये गुण धारण कर लिया दातापन का गुण, तो कभी भी देखो दादियां कितने दाता है, दादियों के सम्मुख जाएंगे हमेशा दादी कुछ ना कुछ देते रहते हैं, दातापन के मुख से मधुर बोल ज्ञान योग के बोल ये सब निकलते रहते हैं। ऐसे तो धरती को हम अपना मित्र बना ले, तो कभी भी अर्थक्वेक भूचाल ये जितने भी आएंगे हमारे दुख अशांति का कारण नहीं बन सकते, ये पांच तत्व। ऐसे वायु, वायु का क्या गुण है, वायु हर चीज को उड़ा के ले जाती है, हल्की चीज को उड़ा के ले जाती है, भारी चीज पृथ्वी की तरफ आती है हल्की चीज ऊपर जाती है। तो अगर वायु की तरह हमने हल्का रहना सीख लिया, वायु प्राण वायु कही जाती है, हम जो श्वास लेते हैं वो श्वास के बिना वायु के बिना तो कुछ मिनट भी नहीं जी सकते, तो वायु की तरह हम हल्के रहे, परीक्षाएं परिस्थितियां आए कुछ हो लेकिन वो हमें भारी ना कर दे। जो बाबा कहता है सदा हल्के रहो उड़ते रहो और उड़ाते रहो, गीत भी है ना, तो ऐसे ही हम जीवन में जितने हल्के रहेंगे तो जितने साइक्लोन आएंगे तूफान आएंगे पांच तत्व तो हलचल में आएंगे, लेकिन अगर हम भारी नहीं होने की गुण धारण किया होगा तो जितना भी साइक्लोन होगा तूफान आएंगे ये हमारे मृत्यु दुख अशांति का कारण नहीं बन सकते, क्योंकि उसका तत्व का हर तत्व के आप गुण निकालोगे, हर तत्व में दस पंद्रह ऐसे गुण हैं, यहाँ तो समय के अभाव में मैं और डिटेल नहीं बता सकता। इसी तरह अग्नि का क्या गुण है, जो आपको बताया ज्वालामुखी योग में कि अग्नि रूप परिवर्तन कर देती है, तो ऐसे ही सूर्य में सूर्य अग्नि का स्वरूप है, तो हमें भी योग अग्नि हमारी ऐसी जली हुई हो कि दुखी हुई आत्मा आए, दुखी सुख का हमसे अनुभव करके जाए, उसका हम रूप परिवर्तन कर सके, जिस आत्मा की जो इच्छा है। जैसे मैंने बताया ना, ब्रह्मा बाबा का अंत में देखा, इच्छा हुई, संकल्प हुआ, बाबा ये करे, तुरंत बाबा के द्वारा वो इच्छा पूर्ण हो गई। अंत में लोग हमारे सामने अनेक इच्छा लेके आएंगे, हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, उनको आशीर्वाद दे सकें, वरदान दे सकें। ये देखो बाबा भी आते हैं ना गुलजार दादी के द्वारा, कैसे देखो आशीर्वाद देते हैं। बस क्या अनुभव होता है कि हाँ, बाबा के द्वारा हमें वरदानों से झोली हमारी भर रही है। अंत में यही पार्ट हमारे द्वारा चलना है। सारी दुनिया की आत्माएं त्रस्त होकर हमारे सम्मुख आएंगी, और हमारे द्वारा ये तभी हो पाएगा जितने हम हल्के होंगे, जितने हमने अपने को इन तत्वों से, क्योंकि ये तो शरीर ही है ना, तो इन शरीर के तत्वों को भी हमने कितना पावन किया होगा। और आकाश तत्व, उसकी क्या विशेषता है? आकाश विशाल है, महान है, एक ही आकाश है। आकाश में जब सैटेलाइट वैज्ञानिक लोग छोड़ते हैं तो क्या होता है? तब कम्युनिकेशन, आज मोबाइल के द्वारा, फोन का, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, दुनिया के किसी कोने में भी हम तुरंत संबंध, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आकाश में सैटेलाइट है, आकाश विशाल है, महान है। इतना ऐसी हमारा हृदय भी जितना विशाल होगा, महान होगा, बाबा कहते हैं फिराक दिल बनो। हृदय में किसी की भी कमी और कमजोरी वो हम हृदय में धारण न करें, देख भी रहे हैं बस उसके प्रति भी शुभ भावना रहे, बाबा इसकी ये कमी कमजोरी, लेकिन हम दिल में कभी धारण न करें, क्योंकि उसकी कमी कमजोरी वो तो निकालने का पुरुषार्थी है, कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने देखी तो हमने अपने अंदर धारण कर ली, हमारे अंदर वो कमी कमजोरी आ गई। क्यों? क्योंकि आंखों के रास्ते ही वो दिल में उतरते हैं। तो इसीलिए किसी की भी कमी कमजोरी को स्थान न दे, वो तब होगा जितना हमारे विशालता का गुण हमने धारण किया। तो आज हम यही संकल्प लेके हम सब लोग उठे यहां से कि बाबा जो जो श्रीमत देता है, और उसका सबसे बढ़िया इलाज क्या है पता है? मुरली हम लोग सब सुबह सुबह सुनते हैं, तो जैसे ही मुरली सुने, जो आज के लिए बाबा की श्रीमत है, उस दिन ही हमने ताजा ताजा हलवा जैसे खा लिया। बाबा ने कहा बच्चे सेवा का, बस थोड़ी सी भी सेवा करी श्रीमत की पालना हो गई। बाबा ने कहा बच्चे खाने में याद रखो, अपने लिए युक्ति रचो। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे देखो बच्चे, मैं भी खाने में शुरू में याद करता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ, तो मैं क्या युक्ति रखता हूँ पता है? ब्रह्मा बाबा बताते थे कि बस जब रोटी तोड़ते हैं, कौर खाते हैं, तो मैं ये युक्ति रखता हूँ, एक मैं गस्सा जो है एक टुकड़ा मैं खा रहा हूँ, एक मैं शिव बाबा को खिला रहा हूँ, एक मैं खा रहा हूँ, एक मैं शिव बाबा को खिला रहा हूँ, युक्ति रखते हैं। तो जब बस बुद्धि में ये होगा कि मैं मेरे साथ साथ बाबा को मैं खिला रहा हूँ, तो बाबा की याद हो ही गई। इसी तरह स्थूल कोई भी काम करते हैं, उसको अलौकिक में हम परिवर्तन कर लें। स्थूल काम को मानो माता है रोटी बेल रही है, तो गोल गोल रोटी है, बस गोल सुदर्शन चक्र बुद्धि में आ जाए। भाई लोग स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बस अपना ड्राइवर स्वरूप, भाई मैं आत्मा ड्राइवर, जैसे ये अभी मैं ये साइकिल चला रहा हूँ या स्कूटर, मैं आत्मा भी ड्राइवर हूँ, और इस शरीर के द्वारा, इस शरीर को मैं ये चला रहा हूँ, मैं आत्मा ड्राइवर। हर लौकिक बात को, कपड़े धोती हैं माताएं, तो बस बाबा ने क्या कहा है, ये शरीर भी हमारा वस्त्र है। बाबा आके हमें ज्ञान योग से हमारे आत्मा की और वस्त्रों की सफाई कर रहा है। बाबा कौन से साबुन का नाम लेते हैं? लक्स, नहाने का। लक्ष माने लक्ष्य, जितना बुद्धि में लक्ष्य होगा, बस मुझे अपनी आत्मा को और इस शरीर को, दोनों को पावन बनाना है। और बाबा की बुद्धि में था तो तभी देखो 72 घंटे तक भी बाबा का शरीर कितना चमकता हुआ, फ्लेक्सिबल, कोई अकड़न नहीं, और जब संस्कार कराया, स्नान कराया, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाबा, नहीं तो कुछ घंटों के बाद ही शरीर काला पड़ने लगता है, स्टिफ जीत अकड़ जाता है, कितना कुछ भी नहीं। तो ये प्रकृति जीत का लक्षण है। पांच तत्वों के बने शरीर को भी बाबा ने विजय प्राप्त कर ली। तो आज हमारा यही संकल्प रहे कि बाबा का साथ पूरा तभी रहेगा जब श्रीमत का हाथ। तो जो बाबा की मुरली में सुनते हैं उस दिन की एक दो श्रीमत हम धारण करके जैसे ही हम उसे पूरा करेंगे उतना शक्ति का स्टॉक हमारे पास जमा हो जाएगा। और जितना हमारे पास स्टॉक होगा तभी तो हम दूसरों को दे सकेंगे। हमारे पास ही कोई चीज नहीं होगी तो हम दूसरों को क्या देंगे। अपना हम स्टॉक जमा करने का लक्ष्य रखेंगे और जितना, और ये बाबा देखता है, बाबा इसी बात से खुश होता है। देखो हर मुरली में बाबा ने जो होमवर्क दिया होता है फिर बाबा कहता है, और अगर नहीं पूरा किया हुआ होता है, हाँ हाथ खड़ा करो, सबके हाथ खड़ा नहीं होते, तो बाबा कितना दयालु है, कृपालु है बाबा। चलो अच्छा बच्चे एक हफ्ता और, चलो बच्चे कोई बात नहीं, अगर नहीं प्राप्ति की कोई लक्ष्य दिया, चलो पुरुषार्थ किया, मेहनत करी, अगर पुरुषार्थ भी किया तो भी बाबा खुश हो जाता है, ग्रेस मार्क देके बच्चों को आगे बढ़ा देता है। तो इसीलिए अगर हमने पुरुषार्थ भी किया होगा कोई चीज का, सफलता पूरी नहीं भी मिली तो भी बाबा जो है ये देख कर ही खुश हो जाता है, बच्चों ने कम से कम अटेम्प्ट तो किया ना, बच्चों ने कम से कम उस जो मैंने श्रीमत दी उसकी पालना तो की। हम श्रीमत पालन करने वालों की लाइन में आ गए, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों की लाइन में ना हो। अब वो तभी होगा जब जैसे मुरली सुनी, मुरली की कोई बात को हम उस वक्त धारण करके थोड़ा भी एक दो मिनट भी उसको, बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान सुनाओ, बस जाते जाते भी किसी को भी ज्ञान सुना दिए, बाबा ने कहा भोजन पे याद करो, करते हैं याद करते हैं, लेकिन लक्ष्य ये रखें कि आज बीच में भोजन खत्म होने से पहले और दो एक बार याद करना। तो श्रीमत का पालन जितना होता है उतनी आत्मा में शक्ति इकट्ठी होती जाती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। मैं यहीं पर ही समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि अभी भी फिर आपको बहुत पावरफुल और क्लास मिलेगी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ही हमारे सामने है जो सबसे आदर्श और जो नंबर वन और जो संपूर्ण कर्मातीत बन गए। केवल श्रीमत के आधार पे हम सब भी जरूर बाबा की तरह संपूर्ण बनेंगे, और बाबा के साथ ही साथ हम सबको घर में भी जाना है और साथ में फिर सतयुग से पार्ट बजाने भी आना है। ओम शांति, ओम शांति।